اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ نیوز اور میں ہوں ارشد ظہیر۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر تکفیریت اپنا سر اٹھا رہی ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اور ویڈیو منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ جس میں ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگر بالخصوص کوئٹہ کے اندر کہ اگر یہاں پر شیعہ آئیں اور یہاں پر شیعہ دکھائی دیں تو آپ ان کو مارو، اور روڈوں کے اوپر شیعہ کافر شیعہ کافر کے اشعار جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی طرف بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ایسی ویڈیوز شائع ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوہستان کی طرف سے اگر شیعہ یہاں سے حرکت کرنے لگیں گے تو ہم ان کو گزرنے نہیں دیں گے۔ اور پھر بالخصوص جب شام کے اندر عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی توہین کی گئی تو اس کے حوالے سے ایک شیعوں کے اوپر ایک بہت بڑا فشار ڈالا گیا کہ اس کو کرنے والے شیعہ، اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ شیعہ کرنے والے ہیں، جبکہ ہر ایک کو واضح ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے خوارج ہیں جو اس کام میں انوالو ہیں۔ آج انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن کال پر موجود ہیں ابو عمار صاحب، جو کہ ایک معروف تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آخر ان کے پیچھے کون سے عناصر ہیں کہ حکومت بھی ان کو لگام نہیں ڈال رہی اور اس کرونا کی وبا میں ان کو کھلے عام چھٹی دی گئی ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ابو عمار صاحب، آپ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً، جو کچھ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر تکفیریت کو کھلے عام چھٹی دی جا رہی ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، میں تو اس کو ہمیشہ سے ایک خاص نظر سے دیکھتا رہا ہوں اور میں لکھتا بھی رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ وقتی طور پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے اور لوگ ہمارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہے اور شیعوں پہ وہ ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی ہے اور حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کا سدباب کیا ہے، اس کی سرکوبی کی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوئچ ہے، ایک ایسا بٹن ہے جو دو حوالے سے جب چاہے آن ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔
صحیح۔
اور وہ یہ کہ ایک گروہ جو مکتب تشیع کے خلاف سرگرم عمل ہے پوری دنیا میں اور جس کی ایک شاخ پاکستان میں ہے، جس کا جو بھی نام دیں، حوثی بھائی صحابہ نام دیں، لشکر جنگی نام دیں، طالبان نام دیں، کوئی بھی نام دیں،
جی جی،
تو وہ جب وہ گروہ کے کوئی ایک جتھا جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج یہ سوئچ آن کرنا ہے تو وہ سوئچ خود آن کر دیتا ہے۔
صحیح۔
اور وہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا اور وہ سارے پھر وہی معاملات دوبارہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اہل تشیع کے پر ظلم زیادتی یا ان کے خلاف پروپیگنڈا یا یہ کہ ان کی اہل تشیع کی شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔
صحیح۔
اور دوسرا بٹن اور سوئچ جو ہے وہ پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کے، اس مقتدر حلقے کے، اس مقتدر ادارے کے ہاتھ میں ہے کہ جنہوں نے ایسی تکفیری سوچ کو پروان چڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے، رول پلے کیا ہے، پروان چڑھایا ہے، پالا ہے، دودھ پلا کے ان کو جوان کیا ہے۔ وہ جو بٹن ان کے پاس ہے، اگر وہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اسٹریٹجیکل ڈیپتھ ہے تو اس ڈیپتھ کے چکر میں وہ چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو وہ اس کو آن کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اب صورتحال بہت کنٹرول میں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور مقتدر حلقے اور حکومت جو ہے اب اس پہ سنجیدہ ہیں۔ اس کو کبھی اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگوں کو سنجیدہ رہنا چاہیے اور اطمینان کا سانس لینا چاہیے کہ یہ ماضی میں جو روش ہے یہ مسلسل اگر آپ جائزہ لیتے رہے تو وہ مسلسل یہ نظر آتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں یہ سوئچ یہ ایک گروہ آن کر دے اور وہ دوسرا گروہ آن کروا دے تو وہ ہوتا رہتا ہے، اور وہی صورتحال ہے آج۔
ابو عمار صاحب، سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ हमारे जो एक इसी मकबे फिक्र यानी मिल्लत जाफरिया से ताल्लुक रखने वाली दो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनमें से एक जमात इस वक्त भी इमरान खान के साथ बैठी हुई है और मौजूदा हुकूमत के साथ है, तो इस वक्त उनको इनका क्या अमल दखल है इस तमाम तर वाकयात को रोकने में? क्या ये अपना कोई अमल दखल अंजाम दे रही है, नहीं दे रहे, क्या है सवाल से क्या कहेंगे आप?
मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो ये ख्याल नहीं है कि वो हमारी जो भी तंजीमें हैं, जो भी जमाते हैं, और आपका इशारा अगर वो MWM की तरफ है, जो कि जाहिर है उसी तरफ है क्योंकि वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ नजर रखता हूँ MWM की पॉलिसी से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये बात आगे नहीं करते होंगे, या फिर इन करते होंगे और हुकूमत को बोलते भी होंगे, सब बताते भी होंगे कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन असल बात ये है कि उस बोलने में वजन कितना है, आपने अपना वजन कितना बनाया है, असल बात ये बोलने के लिए तो मसलन यहाँ से बैठ के मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या मेरे इस बोलने पे क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई एक्शन लेगी, एस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी, तो ये वजन देखा जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो जमातें जो है वो उन्होंने अपना वजन नहीं बढ़ाया है, उसको अपना वजन पैदा नहीं किया, अगर वो वजन पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके लिए वो अपना होमवर्क अच्छा रखते हैं, उसके लिए वो अपने आप को मुनज़्ज़म और मजबूत करते हैं, अवाम उन्नास को अपने साथ रखते हैं, तो फिर वो उसमें बाद में वजन होता है, और जब वो एक बात कहते हैं और एक कोई शिकायत करते, कोई शिकवा करते, कोई तजवीज देते हैं हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो उसको मानते और उस पर अमल दरामद करने के लिए मजबूर होते, लेकिन चूंकि इनका अपना वजन कुछ नहीं है, लिहाजा ये कहते भी होंगे तो उसकी कोई हैसियत और वक्त नहीं रहती है।
सही। अब उमर साहब, आपने ये देखा कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र की तौहीन शाम के अंदर की जाती है तो एक खास तोला उठता है कि जो इस बात को ओपन करने की कोशिश ये करता है कि ये इसके पीछे तमाम तर ईरान और शियत का हाथ है, जबकि इससे पहले इनको मालूम भी है कि हजर इब्ने उदय की कब्र को जब वहां पे खोदा गया, जब तौहीन की गई, जब अंबिया की कब्र की वहां पे तौहीन की गई, तो उसके लिए दाइश ने ये सब कुछ किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जिसके वजह से एक्ट बन चुके हैं, कानून बन चुके हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है और हुकूमत इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, तो आप क्या समझते हैं इसको?
असल में बात जो आपने कही है बहुत मुनासिब आपका सवाल है, और ये कि जनाब सोशल मीडिया पे ये जो कुछ ये तकफीरी टोला जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, तो उसके हवाले से जाहिर है इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत के तमाम इदारे और वो एस्टेब्लिशमेंट जो ये कहते नहीं सकती है, वो मुख्तदर हल्का जो कहते नहीं सकता कि पाकिस्तान के हम हिफाजत के जामिन हैं, पाकिस्तान की नजरियाती सड़क के भी हिफाजत के हम जामिन हैं, लेकिन वो तो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसका कोई एक्शन नहीं होता, जो कि वो सोशल मीडिया उसको फॉलो भी करते होंगे, वो देखते भी होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन वो आके बंद किए रहते हैं और वो सिलसिला चलता रहता है क्योंकि उनको मकतबे तशय्यो से कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा पाकिस्तान में कि मकतबे तशय्यो उठ खड़ी होगी, क्योंकि वो जानते हैं अब वो जिन लोगों को उन्होंने यानी लूप में अपने लिया हुआ है, जिन लोगों से रवाबित है उनके और जिन तंजीमों के उनके पास तजिया और तहलील मौजूद है, तो इस बात को जानते हैं कि ये इस वक्त बिखरे हुए लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रोहों में ये बिखरे हुए हैं, लिहाजा इनमें वो जान नहीं है कि ये कभी खड़े हो सकेंगे इस वक्त, लिहाजा वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इस मकतबे तशय्यो के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, जबकि कवानीन मौजूद हैं, जबकि साइबर क्राइम के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कभी किसी आपने सुना कि किसी ऐसे के खिलाफ हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई की हो, कोई किसी को पकड़ा हो, जबकि आप देखें ये एक मारूफ आदमी है आफताब नजीर, आफताब नजीर के हवाले से देखें उसकी इतनी वीडियोज हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, क्या कुछ नहीं है, बल्कि वो अरबी बहुत अच्छी जानता है, तो जनाब वो वहां से बैठ के एक वो जूम मीडिया के नाम से जो है बैठ के वहां पे वो शाम में किसी शराफत करता है और वहां से उसका इंटरव्यू लेता है और उससे बातचीत करता है, और वो शाम में बैठा हुआ वो शख्स जिसने अपना फेक नाम भी रखा हुआ है अबुल हसन, और वो वहां से कहता है कि बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ, और खुदा के लिए आप पाकिस्तानी फौज से कहें, आप पाकिस्तानी हुकूमत से कहें कि वो यहाँ आए और हमारी मदद करें, यहाँ रावजी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जिबा कर रहे हैं, हमारी खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं है। और वो आफ्ताब नजीर उस मीडिया पे बैठ के वो ये बात बड़े धड़ल्ले से और बड़े वसूख से कह रहा है कि इंशाल्लाह मैं आपकी ये बात पाकिस्तान की आला फौज के जो चीफ है बाजवा साहब का नाम लेता है कि मैं वहां तक भी पहुंचाऊंगा और हुकूमत तक भी पहुंचाऊंगा, और इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहे, ये इंशाल्लाह जल्द आपकी दादरसी होगी सरकारी सतह पे भी और हुकूमती सतह पे भी, और ये देश के हवाले से भी उसने कहा कि ये हम आपकी मदद करेंगे। तो जब ऐसी चीजें वायरल हो रही है तो क्या इसको कोई पूछने वाला है? कहां है हुकूमत? कहां है साइबर क्राइम का एक्ट और उसका कानून? कहां वो स्टैंड करता है? यानी वो अगर अहले तशय्यों में से कोई उठकर अगर कोई ये बात कह दे, इवन देन अमीर माविया के खिलाफ कोई बात कर दे, तो फौरन साइबर क्राइम जो है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये धड़ल्ले से बैठ के जो है जो कुछ कहते रहे, फिर आपने देखा वो तारिक जमील के हवाले से, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई कि वो शख्स जो है वो धड़ल्ले से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहाँ है रोकथाम? कहाँ है रियासत? कहाँ है हुकूमत? कहाँ है एस्टेब्लिशमेंट? कहाँ है वो मुक्तदर हलका जिसको पाकिस्तान की बड़ी फिक्र रहती है? तो क्या ये रियासत के खिलाफ साजिशें नहीं है कि जहाँ तफरका फैलाया जा रहा है, जहाँ भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट को, क्या ये मुक्तदर हलके को नजर नहीं आता है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इकदाम करें? क्यों? इसलिए कि शायद वो भी इस पे आग बन किए और कान बन किए रहते हैं कि उनको भी इसमें मजा आता है, और वो भी शायद किसी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह नहीं चलेगा, यानी मकतब तशय्यों को वो मजबूत देखना नहीं चाहते हैं। और मेरा ये ख्याल है, मैं बराह रास्त की बात कह दूं कि वो ईरान को एक तरह से मुसलसल मैसेज दे रहे होते हैं कि मकतब तशय्यों के हवाले से पाकिस्तान में आप नजरें जमाए ना रखें, अगर आप कोई इस तरह की फिक्र रखते हैं और आप समझते हैं कि अहले तशय्यों को पूरे दुनिया में आप मुजतम करेंगे और मुत्तहिद और मुनज्जम करेंगे, तो पाकिस्तान में देख रहे हैं ये सूरत हाल है कि ये आपस में जो है ये लड़ाई है, तफरकाबाजी है, और वो इसको एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मनफी थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सु इस्तेमाला करते हैं।
अबू मासर, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि परसों एक करारदाद पेश की गई पंजाब असेंबली के अंदर कि जिसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक के तामीर के हवाले से बात की गई और वो करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर भी हो गई। इसके साथ साथ एक और जो है वो बिल पास होता है कि जिसके अंदर करिकुलम के हवाले से बात की गई, तो क्या हमें किसी बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? उसके बाद थोड़ी बात कीजिएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो अभी कुछ सोशल मीडिया पे मैं ये लिख भी चुका हूँ कि देखिए ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल के नाम से जो बिल पास हुआ है
जी।
तो वो उसमें उन्होंने जो है वो ये बाकायदा यानी ये कानून साजी है, ये बिल पास हुआ है, जबकि वो जो एक हसन मुसरा साहब है, अल्लाह ताला उन्हें जजाय खैर दे, और उन्होंने अच्छा जुर्रत का काम किया है और अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने एक करारदाद पास की। चले कुछ तो हुआ, लेकिन ये कि वो सिर्फ और सिर्फ करारदाद है, करारदाद की हद तक ही है, और वो करारदाद की सूरतयाल ये होती है जनाब कि करारदाद जब आगे मूव हो तो समझे उसका उसके कोई असरात मुरतब होंगे या होने जा रहे हैं या हो सकते हैं, यानी ये कि अगर वो असेंबली से बाहर निकल के अगर असेंबली का स्पीकर उस करारदाद को आगे हुकूमत पाकिस्तान को भेजे और हुकूमत पाकिस्तान संजीदा लेके उसको अपनी वजारत खारजा को भेजे, वजारत खारजा वो सऊदी वजारत खारजा से बात करे कि ये मामला है, हमारे एक असेंबली में ये करारदाद पास हुई है, इस इसकी आप वजाहत करें, इस पर बात करें, तब तो ये कह सकते हैं कि ये नतीजा खेज है,
सही
है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये नतीजा खेज होगा। ये सिर्फ करारदाद की हद तक ही पंजाब असेंबली की के रिकॉर्ड की जीरत रहेगा और इससे आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने बिल पास किया है वो तो बाकायदा कानून साजी है और उसमें उन्होंने जो है खुलफाए राशिदीन और उम्मातुल मोमिनीन और साहबाए कराम और अहले बैत उज़्ज़ाम और ये तमाम और खातमुन नबीन के हवाले से ये बिल पास किया है कि उस पर उन्होंने कहा है कि एक बोर्ड होगा बाकायदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जो जो इन चीजों की इन मवाद की तस्दीक करेगा, यानी आगे फर्दर टेक्स्ट की किताबों में वो शामिल किया गया या ना किया गया है, और अगर किसी को एतराज होगा तो वो भी इसी बोर्ड को रुजू करेगा, जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है, एतराज है। तो अब ये सवाल ये बनता है क्या ये गैर जानबदार बोर्ड होगा, क्या रह सकता है गैर मुतासिब और गैर जानबदार बोर्ड रह सकता है, जबकि पाकिस्तान में जैसा इससे पहले मैंने बताया, सारी आप सोशल मीडिया के हवाले से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने इंतजार और इख्तलाफ फैलाया जा रहा है, फैलाया जाता है, उस पर जब आके बन गए तो क्या ये बोर्ड बैठकर जो है गैर मुतासिबाना कोई फैसला कर सकेगा, गैर जानबदार फैसला कोई कर सकेगा, ये पता ही नहीं कर सकेगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में जो रविश है, जो सूरत हाल है, उसको 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 सामने रखते हुए उस तजुर्बे उस मुशाहदे की रोशनी में बिल्कुल मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो मनमानी करेंगे और उसमें हमारी साइड के मकतबे अहले बैत के हवाले से अगर कोई बात होगी तो या तो उसको कट डाउन करेंगे, उसको निकालेंगे, या फिर ये कि उस पर सरजनिश करेंगे, वो हमारी ही, वो अपने साइड पे कुछ भी नहीं करने होंगे और ना वो करेंगे।
सही। इससे पहले हमने ये देखा था कि जब ये बोर्ड बनाया जा रहे थे उस वक्त एजुकेशन के से कुछ कमेटीज बन रही थी, उसमें माविया आजम को इन्वॉल्व किया गया था, माविया आजम को पंजाब की तरफ से उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। जब इतना मुतासिब तरीन शख्स कि जो किसी एक खास फिरका की तकफीर का कायल है, उसको ये कैसे बनाया जा सकता है?
जी तो बस आप देख लें, आपने बहुत बेहतरीन मिसाल दी है, आप देख लें कि जब ये जो इससे पहले मैंने बात कही है कि वो गैर जानबदार नहीं रहेगा, इससे साबित है कि जब ये बोर्ड में इस तरह के लोग होंगे तो वो, और अगर हमारा एक रुकन उस बोर्ड में बैठा भी होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड तो करा सकेगा, वो कहेगा कि ये मैं एहतजाज करता हूँ या ये मेरी तजवीज ये है या मेरे नोट्स ये है, इसको आप लिखें, ये मुखालिफ नोट्स मेरे ये है, आप इस पर लिखें, वो लिखा तो जाएगा लेकिन वो बात इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएगी, वो बात बाहर नहीं आएगी, वो वहीं दब दबा जाएगी और वो बात सामने भी नहीं आ सकेगी कि वहां पे हमारे नुमाइंदे ने बात क्या की। ज्यादा से ज्यादा वो नुमाइंदा अगर बाहर आएगा तो अगर कोई मीडिया पे कोई बात कह सके और उसको मीडिया पे मौका मिल सके तो करे, अदरवाइज वो सोशल मीडिया पे ही वो अपना मौके बयान कर सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग होंगे वो बोर्ड के अरकान, वो सारे के सारे वन साइडेड लोग होंगे और 19-20 सारे एक जैसे फिक्र के हामिल लोग होंगे, जैसा कि आपने कहा कि जब वो उसकी कमेटी में ऐसे लोग शामिल होंगे तो फिर जाहिर है उसके फैसले किस तरह जो है वो शफाफ हो सकते हैं, कतई नहीं हो सकते, यानी ऐसा लगता है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में एक खास माहौल पैदा किया जा रहा है, बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग के साथ और बहुत आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से, और सामने इमरान खान की तस्वीर दिखाई जा रही है कि ये एक लिबरल आदमी है और इसकी तो शियों से ताल्लुकात भी हैं और शिया जमातों से इसके रवाबित भी हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है वो बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली जो है वो एंटी शिया मामला पे बहुत ही तेजी के साथ मैं समझता हूँ कि काम हो रहा है। और मैंने यही कहा अपनी तहरीर में कि ये जो बिल पास हुआ है हमें ऐसा लगता है वो करारदाद वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, जबकि हमें इस बिल के ऊपर नजर रखनी चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे करवा रहा है, इसकी आगे तशरीयात क्या है और मसरामत किस तरह हो रहा है, हमें किस पे नजर रखने की जरूरत है। जी अगर आप इजाजत दें तो ये एक छोटी सी बात में
जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
ये आपने देखा कि ये आजकल क्वेटा में भी एक सूरतेहाल पैदा हुई और वहाँ पे भी एक माहौल बनाया गया तफरके का और वहाँ पे जो अगरजा जो साबिक एमपी है उनके खिलाफ जो है वहाँ पे एक बदतमीजी की गई और उसमें सरकारी इदारे के लोग भी शामिल थे। इसी तरह पाराचरार में हालिया हालात को खराब किया गया, इसी तरह मुल्तान में एक वाकया पेश आया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इसका कौन जिम्मेदार है, ये हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत किधर है, वो इन चीजों को क्यों नहीं देख रही है। और मैं इस पर एक बात बहुत पहले मैं कह चुका था, जब पाराचरार में हमारे मोमिनीन अहले तशय्यो की कुछ लाशें लेकर बैठे हुए थे और मुतालबा कर रहे थे कि बाजवा साहब को बुलाया गया, बाजवा साहब पाराचरार आए और बात करें, तो मैंने उस वक्त भी ये एतराज किया था कि ये हल नहीं है कि बाजवा साहब आए। और मैंने उस वक्त लिखा था और अब भी मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अपने लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि देखें वो एक ऐसा खत्ता है कि जहां यानी आप अपने आप को अगर आप खड़ा नहीं करते हैं, ताकतवर नहीं बनाते हैं तो आपको मतल के रख दिया जाएगा,
सही
पीस के रख दिया जाएगा। लिहाजा वहां तो यही है, लड़ो और अपनी हिफाजत करो। और मैंने ये कहा था कि लिखा भी था और फिर मैं कह रहा हूं कि बात ये है कि वहां पे अब आपके गिर्द जो घेरा तंग किया गया है वो आपके ही मुहाफिजों के जरिए घेरा तंग किया जा रहा है।
सही है
कि हिफाजत के नाम पे आपको घेरा जा रहा है कि आप वहां पे इस काबिल ही ना हो सके कि आप अपनी रिवायती तौर पे जो आप हमेशा आप अपने अपनी हिफाजत का काम सर अंजाम देते रहे वो आप अंजाम दे सकें, बल्कि वो सो कॉल्ड किस्म के जो महाफिज है वो सामने आएंगे और कहेंगे आपको कोई जरूरत नहीं है, हम मौजूद हैं, जबकि वो मौजूद नहीं होंगे। क्योंकि उनके होते हुए जब कई बार ये वाकयात हो चुके हैं तो ये इस पर कैसे रिलाई किया जा सकता है, कैसे भरोसा किया जा सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे खिलाफ वहां पे घेरा तंग किया गया है, हमारे लोगों के हाथों को बांधा गया है कि जब उन जरूरत पड़े तो वो खुद उनके हाथ इतने बंधे रहे कि वो कुछ ना कर सके और वो दो तरफा तरीके से जो है वो मारे जाए। एक वो दुश्मन जो पहाड़ के उस तरफ से कभी आता है और शकून मारता है और एक वो जो महाफिज के नाम पे आपके ऊपर शकून मारेगा और आपको मरने के लिए छोड़ देगा और बाद में अफसोस करेगा और दौरे करेगा और कहेगा इंशाअल्लाह ताला हम इसको इस पर एक्शन लेंगे और हम आपको वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई काम यहाँ पे होने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, ये सियासी बयान फिर चलते रहेंगे।
जी बहुत शुक्रिया कुमार साहब, आपने वक्त दिया हमारे नाज़रीन को, बताया आपने कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये हकूमत और आला जो मुक्तदार इदारे हैं उनकी इमा पे सब कुछ हो रहा है। अगर क्वेटा के अंदर जाकर हमें धमकियां दी जाती हैं, मुल्तान के अंदर हमारे अफराद को शहीद किया जाता है या वाकई चिल्लास दोबारा दोहराने की हमें धमकी दी जाती है और पाराचरार के अंदर हमारे अफराद की लाशें गिराई जाती है और ब्लास्ट किया जाता है और जब वो लोग खुद उठते हैं तो फिर हुकूमत सामने आती है, फिर आर्मी सामने आती है और ये कहती है कि हम आपके मुहाफिज हैं और हम आपको बचाने के लिए मौजूद हैं। इससे पहले हमारी ये मुक्तदार हलके पहले भी देख चुके हैं कि डीए खान के अंदर हमारी शहादतें की गई, हमारे अफराद को शहीद किया गया, क्वेटा के अंदर हमारे अफराद को शहीद किया गया, इन लोगों की कस्टडी में रहते हुए शहीद किया गया। लिहाजा हमें अपना दिफा खुद करना होगा उस वक्त तक जिस वक्त तक ये मुक्तदर हलके इस बात पर हमें मुकम्मल यकीन दहानी नहीं करवाते कि हम वाकया आपके साथ हैं या हम जब तक इनको आजमा नहीं लेते देख नहीं लेते। इंशाल्लाह देखते रहे एनएच न्यूज, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।